आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। फेडरल विपक्ष ने ये कहने से फिलहाल इनकार किया है कि न्यूक्लियर ऊर्जा के लागू होने के बाद देश के कितने प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं का हिस्सा परमाणु ऊर्जा से पूरित किया जा सकेगा। विपक्ष नेता पीटर डटन ने चुनाव जीतने की सूरत में 5 राज्यों में 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुरू करने का वादा किया है। स्मार्ट एनर्जी काउंसिल का कहना है कि इन ऊर्जा केंद्रों को सुचारू करने की लागत लगभग $600 बिलियन तक आ सकती है और मौजूदा अनुमान के अनुसार 2050 तक ये ऑस्ट्रेलिया की अधिकतम 3.7% ऊर्जा आवश्यकता की ही आपूर्ति कर सकेंगे। विपक्ष ऊर्जा प्रवक्ता टेड ओब्रायन ने एबीसी के इनसाइडर्स कार्यक्रम पर कहा है कि सही आंकड़ों के लिए ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि चुनावों के पहले ये आंकड़े जारी किए जाएंगे या नहीं। वहीं पर्यावरण मंत्री तान्या प्लेवरसेक ने स्काई न्यूज पर कहा है कि ये योजना बहुत कच्ची है और इसकी अधिक जानकारी की आवश्यकता है। वहीं नेशनल्स लीडर डेविड लिटिल प्राउड ने विपक्ष नेता पीटर डटन के प्रधानमंत्री पर किए गए हमले का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने गठबंधन की प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा योजना की निंदा की थी। शनिवार को हुई लिबरल पार्टी फेडरल काउंसिल की बैठक में श्री डटन ने प्रधानमंत्री को एक पुरुष के शरीर में बालक बताया था। श्री लिटिल प्राउड ने स्काई न्यूज से कहा है कि वे श्री डटन के बयान का समर्थन करते हैं। नेशनल्स नेता ने माना है कि गठबंधन की परमाणु ऊर्जा योजना की लागत काफी बड़ी होगी, लेकिन उनका कहना है कि ये कीमत फिर भी एल्बनीजी सरकार की हरित ऊर्जा की योजना से सस्ती है। फेडरल सरकार का कहना है कि नई टैक्स कटौतियों के बाद कम और मध्यम आय वाले लोगों के पास अपने हाथ की रकम अधिक होगी। नई टैक्स कटौतियां इस माह के अंत से यानी 1 जुलाई से लागू की जाएंगी। कोष के नए विश्लेषण में ये सामने आया है कि औसतन ऑस्ट्रेलियाई गृहस्थियों के पास साल के पीछे $2,000 अधिक होंगे, जिसका अर्थ ये है कि प्रति सप्ताह $40 से कुछ अधिक रकम। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर का कहना है कि ये रकम बच्चों वाले परिवारों के लिए और अधिक बढ़ जाती है। ये तीसरे चरण की टैक्स कटौतियां $1,50,000 से कम कमाने वाले ऑस्ट्रेलियाइयों के लिए अधिक फायदेमंद साबित होंगी। वहीं दूर दराज के पूर्वी आर्नहम लैंड के अबोरिजिनल नेता सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें जन्म देने की एक पुरातन रिवायत को उनकी परंपरागत भूमि पर फिर शुरू करने की अनुमति दे दी जाए। 40 साल से अधिक समय से गोलिंगविंकू की महिलाएं जन्म देने के लिए सौयों किलोमीटर की उड़ान भर डार्विन और नलनबाय जाती हैं, लेकिन महिलाओं और शिशुओं के लिए लगातार परिणाम खराब ही बने हुए हैं और इसीलिए अब समुदाय अपनी परंपरागत रिवायतों के अधिकारों की मांग कर रहा है। मॉली वॉर्डगर रिसर्च सेंटर से डॉक्टर येविट्रो का कहना है कि आंकड़े दिखाते हैं कि जन्म के समय अबोरिजिनल बच्चों के मरने की संख्या गैर इंडिजिनस बच्चों से अधिक है और इसीलिए परंपरागत तरीकों की अनुमति दिया जाना अनिवार्य है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एक हमास प्रवक्ता का कहना है कि शनिवार को गाजा शहर पर हुए इजरायली हमले में 42 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस्माइल अल तवबता का कहना है कि अल शती रिफ्यूजी कैंप में हुए हमले में 24 लोग और पड़ोस के अल तुफा इलाके में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने 2 हमास के क्षेत्रों को लक्षित किया था, लेकिन इससे अधिक कोई जानकारी इसराइल के हवाले से नहीं आई है। हमास ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि हमला आम नागरिकों पर किया गया था। और अंत में खबरें भारत से। भारत की राजधानी दिल्ली में पानी के संकट को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अनशन पर बैठ गई हैं, वहीं पानी सत्याग्रह की बात चल रही है। आतिशी की अनशन का आज तीसरा दिन है। आपने जल संकट का पूरा ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ते हुए ये कहा कि दिल्ली के उपराज्य वीके सक्सेना भी इसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार की जा रही है। पानी पर जारी सियासत के बीच आम लोग भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली वासियों की प्यास इस सब के बीच कब बुझेगी, ये कहना मुश्किल हो गया है। बीते शुक्रवार आप नेता आतिशी ने दक्षिणी दिल्ली में पानी सत्याग्रह शुरू किया था। उनका दावा है कि हरियाणा ने भीषण गर्मी के बीच यमुना के पानी में दिल्ली का हिस्सा घटाकर 513 मिलियन गैलन प्रतिदिन कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में 28 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। विपक्ष आतिशी के अनशन को पानी पर की जा रही सियासत बता रहा है। वहीं हरियाणा का कहना है कि हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली के लिए उपयुक्त पानी बराबर छोड़ा जा रहा है। इसी के साथ 23 जून 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृषाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।